نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہمارا آج کا موضوع کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنے بچوں کے دلوں میں کیسے ڈالیں. قرآن کی رہنمائی ہمارے لیے دنیا کی سب رہنمائیوں سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. کیا ملے گا اس سے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ کی محبت پانی ہے تو رسول کی تباہ کرنی پڑے گی. دوسری بات قل اطیع اللہ والرسول, ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں یا اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کریں, پھر اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. دونوں آیتوں سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کی محبت لینے کے لیے رسول کی اتباع کرنی ہوگی. اور اگلی آیت میں اطاعت کا لفظ ہے. اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی کہ پہلی صورت ایسی تھی کہ آپ نے اپنے بچے کو کچھ کہا نہیں کہ یہ کرو, بس آپ کو کرتا دیکھ کر وہ خود ہی کرنے لگ گیا. اور اطاعت کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا اور اس نے خوشی سے یہ کام کیا. آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے, کچھ کہیں تو وہ کرے یا آپ کے کہے بغیر کچھ کر دیں؟ کچھ کہے بغیر ہی وہ عالم فاضل بن جائیں اور امام کعبہ بن جائیں. چلیے اللہ تعالیٰ کچھ چنے ہوئے لوگوں کی مثال دیتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا. کیا پتہ چلا؟ چنے ہوئے لوگ, سلیکٹڈ لوگ. کسی بھی سوسائٹی کی کریم وہ ہوتی ہے جس کو اللہ اپنے لیے چن لے. تو کہہ لیجئے کہ یہ اپنے اپنے وقت کے ان لیڈس تھے, معاشروں میں خوب اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے تھے. کون تھے یہ؟ ذریتن بعدہا من بعد. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں پیدا ہوئے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام صاحب اولاد تھے, شادیاں بھی کیں, بچے بھی پیدا کیے. تو شادی کرنا یا بچے پیدا کرنا یہ دنیا داری نہیں ہے, بلکہ یہ سراسر دیندار ہے. ایسی ہی ایک دیندار عورت کی کہانی. اس قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ. اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہر بات کو سن رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار, میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں, وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا, میری اس پیشکش کو قبول فرما, تو سننے اور جاننے والا ہے. یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی ماں, جن کو حنا کے نام سے جانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی نانی. ایک عورت جس کا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے, لیکن اپنی نیت میں اتنی سچی اور کھری تھی, کہا کہ ایک بچہ جو میرے پیٹ میں ہے تیرے حکم سے ہے, میں اس کے بارے میں یہ نیت کرتی ہوں کہ میں اس سے کوئی امیدیں نہیں لگاؤں گی, اس کو نو ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر بھی اپنا نہیں سمجھوں گی, اور اس سے میری کماشی امیدیں یا میرے بڑھاپے کا سہارا اور اس قسم کی باتیں نہیں کروں گی, بلکہ وہ تیرا ہوگا, نام کا میرا لیکن کام کا تیرا, اور اے اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما. ٹھیک ہے, اللہ کو کیا اور چاہیے تھا, اللہ تو قبول کر ہی لیتا ہے تقویٰ والوں کی. لیکن ہوا کیا؟ فلما ودا تھا, پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے, حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اس کو خوب جانتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا, اللہ کو اس کی خبر تھی. اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, یعنی اللہ نے اس لڑکی سے جو کام لینا تھا وہ لڑکوں سے نہیں لیا جا سکتا, مراد یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا کروانا تھا. خیر, میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو शैताने मर्दूत के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। कितनी काबिले रश्क माँ है, ना सिर्फ ये कि बच्ची बल्कि बच्चों के बच्चे, यानी गोया के किसी के बेटी हो और वो बेटी के बच्चों को भी अल्लाह की पनाह में दे दे, कितनी बड़ी बात है। खैर फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन, ये जुमला सुनने के लिए बंदा सारी ज़िंदगी कोशिश कर दे तो भी थोड़ी है। आखिरकार इसके रब ने इस लड़की को बखुशी कबूल फरमा लिया, इसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और ज़करिया को इसका सरपरस्त बना दिया। ज़करिया जब कभी इसके पास मेहराब में जाते तो इसके पास कुछ ना कुछ खाने का सामान पाते। पूछते, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया है? वो जवाब देती कि अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। ये आयत और इसे अगली आयत भी मैं पढ़ती ही जाऊंगी और आप सुनते ही जाएंगे, लेकिन आज इन आयत को छेड़ना मकसद नहीं। ये सारी बातें कुरान की आयत और ये सब कुछ सुनना और पढ़ना हमें इस काबिल कर देता है कि हम अपना मुहासबा करें। आप देखिए कि नहाते हैं ना तो फिर साफ़ सुथरा दिल हो जाता है, बंदे को अच्छा लगता है। अब ये कभी नहीं कहते नहा लिया जो नहाना था, पढ़ लिया जो पढ़ना था। इल्म का पानी भी बिल्कुल दूसरे पानी की तरह हमें मुस्तकिल मिलता रहे तो हम पाक साफ़ रहते हैं। जब हम कुरान के साथ बाज़ाब्ता तौर पे लगे रहते हैं तो हर क्लास में हमारे दिल दिमाग पर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। तो बच्चों के दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे डाली जाए? अगर मैं आपसे ही ये सवाल पूछूं कि आप में से कौन कौन ये चाहता है कि उनके बच्चों में बहुत अच्छी खूबियां हों, तो आसान जवाब है कि वो आदत और वो खूबियां अपने अंदर डालें। देखी हुई चीज़ का असर बोली और सुनी हुई चीज़ से ज़्यादा होता है। आप आज भी अपने दिल को चेक करेंगे ना तो जो बचपन से माँ बाप, फिर दादा दादी या घर में जो भी लोग थे उनको करते देखा है ना, वो नहीं आप भूले। और चाहते ना चाहते कुछ साल के बाद जब हम खुद उस जगहों पे आ जाते हैं तो फिर हम अपने बड़ों की बातें याद करते हैं। हमारे अब्बा ये कहते थे, हमारी अम्मा ने ये किया, हमारी दादी ऐसी थी। और याद रखिए कि सिर्फ विरासत में माल ही नहीं जाता, विरासत में आदत भी जाती हैं। आप कहते हैं बस दो साइन कर दीजिए तो प्लॉट मुंतकिल हो जाएगा, वो जो दो साइन करने से ज़मीन आपके बच्चे के नाम लग जानी है ना, तो आपके दुनिया से जाने से पहले ही आपकी आदत भी बच्चे के नाम लग जाती है। हम ये बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हम जैसे होंगे हमारे बच्चे वैसे भी होंगे। और अगर आपके मेरे दिल में अल्लाह के नबी सल्लम की मोहब्बत है तो बच्चों के भी दिल में होगी, ये हो नहीं सकता। आप देखिए आदतें, जैसे आज DNA का लफ्ज़ अगर मैं बोलूं, और आप में से किसी ने थोड़ी सी भी अगर साइंस पढ़ी है तो वो जानती हैं कि DNA ऐसे ही है जैसे हमारा डाटा, हमारी हार्ड ड्राइव जो दिमाग के अल्लाह ने बना दी, उसमें जो कुछ प्रिजर्व्स होता है फिर क्रोमोसोम्स और कुछ और चीज़ों से गुजरता हुआ वो बच्चे में चला जाता है। इवन किसी का नसब देखना हो तो DNA को चेक करवाया जाता है। अगर माँ बाप के DNA में सखावत है ना, तो ना चाहते हुए भी ये बच्चे में सखावत जाएगी, बच्चा खुले हाथ का होगा। जो माँ बाप अपने बच्चों के सामने खर्च करते, जो प्यार करते हैं, हर चीज़ जाती है, बहादुरी मुंतकिल होती है। आप कह लीजिए कि आपकी हर नेकी, आप चाहें या ना चाहें, आपके बच्चों में जाएगी। लेकिन फिर अमूमन क्यों नहीं जाती? अक्सर लोग कहते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो आप बच्चों के सिलसिले में काउंसलिंग करने करवाने आते हैं, क्या कहते हैं, जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये नहीं अच्छा, मैं तो बड़ी अच्छी थी इस उम्र में, तो मैं बड़ी अच्छी थी तो ये ऐसा नहीं है। तो माजरत के साथ अपनी चुगली मत खाइए। बज़ाहर कुछ लोग बज़ाहर बड़े नेक होते हैं, माशरे में उनका नाम भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उनकी जो असल है ना बच्चे वो देखते हैं। घर आए लोगों के साथ क्या मामला है, अब्बा का बाहर तो ये मुकाम है लेकिन घर में आकर एकदम शोरगुल मच जाता है। अम्मा अपनी सहेलियों में तो ऐसी होती हैं लेकिन जब अकेले में होती हैं तो वो कैसे चीखती हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ना, जो बच्चे असल में ख़ुद देख रहे होते हैं, ये माँ बाप का चूज़ करते हैं। आपका बच्चा वो नहीं बनेगा जो लोग आपको देखते हैं, आपका बच्चा वो बनेगा जो आप खुद हैं। ये आपकी कॉपी है, आप मास्टर कॉपी हैं ना, तो ये आपकी फ़ोटो कॉपी है सर, लिख ले अपना, हर बच्चा आपकी फ़ोटो कॉपी है। कोई डिम है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। तो काउंसलिंग की नीयत से आने वाले अक्सर पेरेंट्स को खुद अपनी तरबियत की ज़रूरत होती है। आप देखिए कि बच्चा माँ बाप को देखता है कि सुबह उठते ही ये भागना शुरू करते हैं पैसे के पीछे। आप उसको ज़रूरत कहें, नीट कहें या बॉन्ड्स के, इस वक्त ये बहस नहीं है। आपका बच्चे जब उसने आंख खोली तो अब्बा को देखा जाते हुए और अम्मा को भी देख लिया, और फिर 5-6 साल तक वो देखते ही रह गया। उसको यकीन होगा ये क्या चीज़ है जिसके लिए अम्मी अब्बू सुबह रोज़ निकलते हैं। तजस्सुस होगा नहीं। अब बंद कमरे में दरवाज़ा बंद करें कि बच्चे नहीं देखेंगे, हम कुछ देखने लगे हैं, तो बच्चों के ज़िम्मे तजस्सुस आएगा, अम्मी अबू क्या देख रहे हैं। तो जब आप रोज़ सुबह घर से निकलते हैं ना, तो बच्चों को यकीन हो जाता है ये कोई बड़ी अहम बात है जिसके लिए माँ बाप निकलते हैं, बस वो भी उसी के पीछे भागेंगे। बच्चे देखते हैं कि अब्बा फलां की बड़ी इज्जत करते हैं। बस आप देखिए घर में कोई बहुत बड़ा आ गया, दौलतमंद, कोई सदर, कोई वजीर, मशीर, अब अब्बा जी तो झुकते जा रहे हैं और अम्मा जी भी खानों पे खाने, तो बच्चे कहेंगे कि आज कोई बड़ा इज्जत वाला बंदा आया बैठा। और आप मासी के साथ धूंतकार करें और अपने बराबर के गरीबों के साथ बुरा करें, क्या आपने नहीं देखा कि अक्सर हमारी जो टोन होती है बच्चे उसको नोट करते हैं। हमारे कल्चर में अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाहर के मुल्कों में तो हमारा वास्ता ही चूंकि गोरों से पड़ता है, तो वहाँ हम थोड़े स्पेसिफिकेटेड हो जाते हैं। और चलें कभी, अब अगर हम साल में एक बार पाकिस्तान चले भी गए 1 महीने के लिए, तो मासियों के साथ हम बड़ी इज्जत से बोल ही लेते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ रहते हुए हम अपने से बड़ों से कैसे बोलते हैं, सर जी बड़े लोग वो लोग, और अपने बराबर वाले हैं तो उनके लेग पुली, और जो छोटे हैं उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जो माड़ा है उसको लताड़ो, उसको पीछे कर दो, अरे ओबे ओबे इधर हो, जगह दे, साइड कर। यानी गाड़ी वाले के सामने मोटरसाइकिल आ जाए तो वो मोटरसाइकिल वाले के बारे में गाड़ी में बैठा क्या बात करता है, ये ऐसा वो वैसा, ये बच्चे सब देख रहे होते हैं। उनको साफ पता है कि आप क्या हैं। और आप अगर अपने बच्चे के सामने किसी बेचारे कमज़ोर या मजलूम के साथ बुरा सलूक करते हैं जिसकी आह भी अर्श पे पहुंच सकती है, तो बच्चा समझ जाएगा कि गरीबों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, काले लोगों की इज्जत नहीं करनी चाहिए। ये कल्ले, ये लफ्ज़ तो मेरी रूह पे पड़ता है। हमारे अपने लोग कहते हैं फलां कल्ले, काले लोग, ये कल्लों की मस्जिद है। अब कोई कल्ला ना कह दे तो हम उसका नाम कोई और रख देते हैं। बच्चे ये देखते हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि मेरे बच्चे मुझसे क्या ले रहे हैं। ये एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह अगले 1-2 वीक के बाद हमारा एक सेमिनार आएगा, आप उसमें भी सुनिएगा, और उसका टॉपिक ही ये होगा इंशाल्लाह कि आप अपने बच्चों को इज्जत करना सिखाएं। आप अपने बच्चों की विरासत सिर्फ माल ना छोड़ें। खुदा के लिए एक दो जुमला बोल देती हूँ, फिर आगे चंद जुमले आपके फ़ायदे के होंगे। और वो क्या कि जितना माल आज हम बच्चों की शादियों पे लगाते हैं, अगर उसका आधा माल भी हम उनकी तालीम और तरबियत पे लगा दें तो नतायज फ़र्क होंगे। आज हम जितना माल अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने पे लगाते हैं, अगर उसका आधा भी उनकी तालीम और तरबियत पे लगा दें तो हमारे बच्चे कम अज़ कम वैसे ना भी सही जो हम चाहते हैं, लेकिन वैसे ज़रूर बन जाएंगे कि हम उनके बारे में कोई अच्छा गुमान कर सकें। तो बच्चा वही करता है जो हम करते हैं। हमारा मामला नबी सल्लम के साथ क्या है, बच्चों का भी वही होगा। तो फिर एक क्ल्यू मैं दे दूं, बच्चों को अल्लाह के नबी की मोहब्बत कैसे दें, अपने दिल में नबी की मोहब्बत भर के। ठीक है, सवाल आपसे करती हूँ, आप सरासर आप बच्चे को निकाल दें बीच में से, खुद से पूछिए, दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, क्या मुझे हकीकत में नबी सल्लम से मोहब्बत है। यही सवाल हज़रत उमर से अल्लाह के नबी ने किया था, ए उमर तुझे मुझसे मोहब्बत है, कहा हाँ, कितनी, कहा सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर सकता हूँ, कहा जान दे सकते इस रास्ते में, कहा नहीं ये नहीं दे सकते। तो आपने फरमाया कि उमर फिर इंसान का ईमान पूरा ही नहीं होता जब तक कि वो अल्लाह के नबी को अपनी जान से भी ना प्यारा रखे। 2-3 रिवायात हैं, किसी एक में आता है कि इसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना हाथ ऐसे हज़रत उमर के सीने पे रखा, और इसी तरह कुछ और भी रिवायात मिलती हैं कि हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के हाथ की ठंडक अपने सीने पे महसूस की, और उसके बाद वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में क्या एक जोश आया, तो मैंने कहा अल्लाह के नबी अब मुझे आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तो आपने फरमाया कि उमर अब तेरा ईमान पूरा हुआ, इस दर्जे पे लेकर तो सोचिए क्या वाकई अल्लाह के नबी से मेरी मोहब्बत इस दर्जे की है। जान देना, फेम देना, शोहरत, स्टेटस, वक्त, माल, कहना आसान है करना मुश्किल। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सिर्फ दावे नहीं किए, उन्होंने दावों की दलीलें भी दी। और वो वाक्या जब पढ़ते हैं सुनते हैं समझ नहीं आता कि एक दान टूटा सो तो टूट गया, अल्लाह के नबी की हौद की कड़ियां निकालते हुए दूसरा कैसे तुड़वा लिया। इशारा याद है किसकी तरफ है? अल्लाह के नबी गज़वे उहद में जब ज़ख्मी हुए तो आपके सर पे एक टोपी थी लोहे की और उसके नीचे लड़ियाँ होती हैं संगलियाँ, उसमें से एक संगली आपकी ये हड्डी, ये देखिए ये सबसे सेंसिटिव होती है, यहाँ खुप गई। अब वो फंस गया, निकल नहीं रहा, कभी अचानक कोई चोट पड़ जाती है ना, अब निकालें कैसे, दर्द होता है। तो सहाबी थे एक, उन्होंने कहा मैं करता हूँ कोशिश, हाथ से नहीं निकलती। उन्होंने दांत से निकालने की कोशिश की, दांत टूट गया। फिर क्या किया होगा, हाय मैं मर गया, अब छोड़ें डॉक्टर पे जाऊँ, नहीं। फिर दोबारा कोशिश की, दूसरा दांत भी टूट गया। मुझे ये दूसरे दांत पे बड़ी हैरत होती है। हम उस वक्त तक मोहब्बत के दावे करते हैं जब तक हमें कुछ ना हो। हम बहुत अच्छे हैं अल्लाह रसूल के मामले में जब तक हमारी कुछ ज़ाती ज़िंदगी पे हाथ ना पड़े। हम ऑलवेज अवेलेबल हैं, शर्त यह कि किसी और ने हमें बुला ना लिया। हमारा माल भी लगता है, हमारी जज्बे भी लगते हैं, पर कब तकाबुल में कोई खड़ा ना हो। आज तुम्हारा इतना सा बच्चा भी तकाबुल में आ जाए तो हम ये तकाजे पीछे डाल देते हैं, इल्ला माशाल्लाह। तो अल्लाह के नबी से आपने अगर अपनी मोहब्बत का अंदाज़ा करना है ना, तो एक जुमला बोल दूँ कि एक मुसलमान के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़ा उसके ईमान की मजबूती से किया जा सकता है। जितना मुसलमान का ईमान मजबूत होगा ना, उतनी ही उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी गहरी होगी। और आपकी मोहब्बत नहीं, फिर इताअत और इत्तबा दोनों लफ्ज़ पढ़े हैं आपने भी, फत्तबेउनी युहबिबकुमुल्लाह। सारी दुनिया कुर्बान है सिर्फ़ एक कोटेशन पे कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो रसूल की इत्तबा कर लो। चाहते हैं अल्लाह की मोहब्बत, सॉरी टू से दैट, किताबी बाजारी असल नहीं है। तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत इताअत इत्तबा और बंदगी अल्लाह की होगी, और ये वाजिब है, ऑप्शनल नहीं है। देखिए फ़र्ज़ सुन्नत नफिल नाम सुनते हैं ना, नमाज़ फ़र्ज़ है, 30 रोज़े फ़र्ज़ हैं, पीर जुमेरात का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। सबको पता है ना दीन में फ़र्ज़ सुन्नत क्या है, नबी की मोहब्बत ये फ़र्ज़ है। ये वो बुनियाद है, मैं समझाने के लिए सिर्फ कहूँगी ताकि शायद बात समझ आ जाए कि निकाह हो गया, शादी हो गई, लेकिन लड़की दिल से राज़ी भी है कि नहीं, लड़के ने सिर्फ जान छुड़ाने के लिए तो कबूल नहीं कहा, अंदर से खुश भी है कि नहीं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला बोलते वक्त यकीन दिलाना चाहिए कि मैं अल्लाह के नबी से संजीदा हूँ। और बुखारी की रिवायत है 15 और मुस्लिम की 44। अनस रावी हैं कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके हाँ उसके वालिद उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब नहीं बन जाता। अपने एक एक बच्चे का नाम लिखिए, अपने माँ बाप का नाम लिखिए, और फिर मुकाबले में अल्लाह के नबी का नाम लिख कर देखिए। ज़रूरत है इस बात की कि हम इसको देखें। चंद पॉइंट्स देती हूँ आपको, सिर्फ आज मेरा मकसद तो एक छोटा सा रिमाइंडर था, लेकिन अगर आप सुन ही रहे हैं तो फिर आपको फ़ायदा देने की खातिर बोल देती हूँ कि सबसे पहले अपने दिल को ये यकीन दिलाइए कि अल्लाह के नबी वाकई रसूलुल्लाह थे। नहीं पता हमें आज ये भी, और अल्लाह ने आपको लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए चुन लिया था, और अल्लाह ने आपको इसलिए ये नेमत अता फरमाई क्योंकि आप अल्लाह के भी महबूब तरीन थे। अल्लाह सिर्फ उसको चुनता है अपने दीन की खिदमत के लिए जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। देखिए ये कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं, ये क्या बड़ी बात है, मैं हूं क्या, 10 लोग मेरे जैसे और मिल जाएं, और एक ये कि वो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे जो सारी मोहब्बतों का मरकज़ है। तो अल्लाह जिससे प्यार करता है ना उसको अपने दीन के लिए चुनता है। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला अगर आपसे राज़ी ना होता तो फिर आपको कभी ना चुनता। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उस शख्सियत से मोहब्बत करें जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, हमें भी उनकी आदात तौर तरीके रहन सहन लेन देन पसंद हो, यानी जैसे अल्लाह के नबी का था ये सब कुछ, वो हमारा भी पसंदीदा हो। और आपको तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत की एक और वजह क्या है कि आप खलीलुल्लाह। बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, तो अल्लाह के नबी भी खलीलुल्लाह थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि میری خواہش ہے کہ میں ابو بکر کو خلیل بنا لوں، لیکن میں تو خلیل اللہ ہوں، یعنی ابو بکر والا مقام نہیں، خلیل تو بہت بڑی جگہ ہوتی ہے نا، تو اللہ نے اپنے نبی کو خلیل بنایا۔ حضرت جندب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی وفات سے 5 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار برات کرتا ہوں کہ میرا تم میں سے کوئی خلیل ہو، یعنی میں کسی کو اتنا پیار ہی نہیں کروں گا کہ کل وہاں شرمندگی ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا جیسے ابراہیم کو بنایا، اور اگر میں کسی امتی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں 532۔ پھر اس میں ابو بکر کی بھی کیا شان ہے، نہ بنے لیکن خواہش تو تھی نا کہ ان کو بناتے۔ ابو بکر سے کیوں اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا، خوبصورت پڑے تھے، بڑی سی گاڑی تھی ابو بکر کی، اپنی چیک بک دکھاتے رہتے تھے اللہ کے نبی کو، کبھی کوئی ایسی چھچوری حرکت آپ نے سنی؟ کیوں، صرف بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے، آئی لو یو کارڈ بھیجتے تھے، خوبصورت سلوگنز بنا بنا کے اسٹیکرز بھیجتے تھے آئی لو یو آئی لو یو کے۔ مجھے بتائیے، سجدہ بھی ہے یہ جملہ ابو بکر کو؟ ابو بکر نے اپنے جسم پہ اللہ کے نبی کی محبت کی گواہیاں ثبت کروائیں، بال کھچوائے، زخم کروائے، بے ہوش ہو گئے، ان مشکل گھڑیوں میں غار ثور کی طرف بھاگ بھاگ کر نکلے۔ انہوں نے عمل سے جو کیا، ہم صرف نسبت سے کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ اور میں محبت کریں، تو اس کی کوئی دلیل بھی تو ہو۔ یہ یقین رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ تو پہلی چیز، میں آپ کو 6-7 پوائنٹس دوں گی اور مختصر ہی ہوں گے۔ پہلی چیز سمجھ آ گئی ہے، آج گھر جا کر سوچے تو صحیح، اور میں سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے، اگر اللہ کے نبی اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کرتے اور دنیا سے چلے جاتے تو کیا آپ اور میں آج ایسے ہوتے جیسے ہیں؟ کیا یہ اسلام ہوتا، قرآن ہوتا، یہ خوبصورت اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہوتا؟ جو کفر اور اسلام کی جنگ تھی اس دور میں، کیا وہ اسلام کے نام پہ جیتی جاتی؟ اللہ کے نبی کی مضبوط لیڈرشپ جو ہے، اس نے آپ کے میرے لیے اس چیز کو آسان کیا۔ کھاتے پیتے مزے کرتے، دیکھیں نا، 4 بیٹیوں کا باپ ہونا آج کے معاشرے میں، کیا کروں، ایک آتی ہے تو دوسری جاتی ہے، ایک کی شادی ہے تو دوسرے کا بچہ ہے، ہمارے بھی تو یہی غم ہے نا، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 7 بچے تھے اللہ کے نبی کے، اور عام مردوں کی تو ایک ہی بیوی بڑی ہے، آپ کی تو 9 بیویاں بھی تھیں ایک وقت میں۔ کیا آپ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، جسم، دل، دماغ؟ آپ کہیں گے اس دور میں نہیں ایسا ہوتا تھا، تو پھر اس دور کے ولید بن مغیرہ کا کیا مسئلہ تھا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ کا کیا ایشو تھا؟ سوچنے کی باتیں ہیں، ہم سب کو ان ساری باتوں کو اپنے اوپر لیں۔ دیکھیے، گوشت، پوست، جگر، ہڈیاں، ہم جیسا تھا۔ آپ کہتے نہیں، وہ تو چنے ہوئے بندے تھے، ان کی تو کیا باتیں، تو آپ کی میری باتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو دوسری بات اپنے ذہن میں پھر یہ رکھیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے اس مقام پہ جس پہ آج میں اور آپ بھی ہیں، فائز رہ کر یہ ساری ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ آج اپنی خواہشات کی لسٹ کاٹیے، کٹ کرے، ٹک ٹک، فشاریبو منہو، چلو بھر اللہ غرفتن، ایک چلو بھر دنیا رکھیے اپنے ہاتھ میں، کروڑوں بھی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے میں اور آپ انسانوں کو دکھی کر دیں، انسانوں کو محروم کر دیں؟ بچے کو رلا کر ایک عورت جا کر، مثال دے رہی ہوں صرف سمجھانے کو، اپنا بچہ روئے یا کوئی اور عورت اس کو بہلائے، اور آپ جا کر کسی اور کے بچے ہی پال لیں اور واپسی پہ 1,000 کرون لے کر آ جائیں، کیا لیا آپ نے؟ کاغذ کے ٹکڑے۔ فری میں کبھی نہ کرتے آپ اس کا کام، کیونکہ آپ کی ضرورت آپ کے بچے کو تھی۔ گھر میں بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں، گھر داری ہو، سب چھوڑ چھاڑ کر آپ جائیں اور اینڈ پہ کاغذ ملے، تو آپ نے کیا چھوڑا اور کیا لیا؟ میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں، فَشَارِبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، قلیل میں ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی آپ کو مجھے سکھا کر گئے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت مقام دیا۔ تو جب آپ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ جان لیں گے اور اپنے ذہنوں میں یہ نقش بنائیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی ساری بشریت سے افضل ہے، مسلم کی روایت ہے 2278 ابو ہریرہ سے، آپ نے فرمایا کہ روزے قیامت میں اولاد آدم کا سربراہ ہوں گا، لیڈر، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہی سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ سوچیے اس پیاری سی شخصیت کے گلے لگ کے رونے کو دل نہیں کرتا جس نے ہمارے لیے اپنی زندگی کیسے کر دیا۔ پھر اگلی چیز جس سے میں سمجھتی ہوں، میں خود بھی اس کی گواہ ہوں، اللہ کے نبی کی محبت دل میں ڈالنی ہے نا، تو تیسرا اس کا طریقہ یہ رکھیے کہ آپ نے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلی، پھر یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو جس دین کو پھیلانے پہنچانے کے لیے آپ کو مارا گیا، برا بھلا کہا گیا، قریبی رشتہ داروں نے سوشل بائیکاٹ کیا، 3 سال تک شاب ابی طالب میں بند کیا، آپ کو دیوانہ کہا، مجنو کہا، اور نہ جانے کیا کچھ، یہ دین محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کی بات نہیں مانی کہ کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہیں، لکم دینکم ولی دین، کمپرومائزنگ ہوتے، ان کو بھی خوش رکھتے، ان کو بھی رکھتے، کچھ بھی نہیں تھا مسئلہ۔ گھر سے نکال دیا گیا آپ کو، آپ کی دو بیٹیوں کی شادیاں ٹوٹ گئیں، دو بیٹیاں گھر آ گئیں، تو کیا ایسا شخص جس نے ہمارے لیے اس دین کو پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں سہیں، کیا آپ اور میں اس کی قدر نہیں کریں گے؟ اور اس کے لیے سیرت کا مطالعہ، ہم گھر بیٹھے باتیں کرتے، میں کہتی ہوں اتنی نرم کرسیوں پہ بیٹھ کے میں آپ اور دین کی بات نہ کر سکے تو پھر ہم نے اس دور میں کہاں پتھروں پہ چلنا تھا۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، نرم گاڑیاں، گرم گاڑیاں، سیٹیں گرم ہیں، ٹائر اچھے ہیں، ہمیں برف کیا کہتی ہے اور ہمیں بارشیں کیا کہتی ہیں اور ہمیں پیدل چلنا اس ملک میں کیا کہتا ہے؟ سوچئے تو صحیح، اگر اللہ کے نبی یہ نہ کرتے تو مکہ اور مدینہ اور اس کے باہر دین جاتا؟ تو آپ اور میں اگر یہاں بیٹھ کر یہ نہیں کریں گے تو یہ خواہشوں سے دین ہوگا، بہت سخت حساب ہے میرا آپ کا۔ آپ میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں میں ان سب کو کہہ رہی ہوں، گیسٹ کو نہیں کہہ رہی، جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا یا کم دیکھے آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہی، میں آپ میں سے ہر ایک اس کو کہہ رہی ہوں کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، اتنا سخت حساب ہے، اور یہ حساب ادھر نہیں چکتا، یہ ادھر چکتا ہے، بچوں کی صورت میں چکے گا، شوہروں کی طرف سے چکے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، نہیں دے رہے، وہ جھگڑا کر رہے، مانگ رہے، دو مجھے، دے کے جاؤ، تیسرا بیٹھا سن رہا ہوتا ہے، کہتے ادھر آؤ، کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے اس نے میرے سے 1 لاکھ روپیہ لے لیا تھا، آج مانگنے آتا ہوں دیتا نہیں، وہ کہتا ہے اچھا ادھر آؤ، میں نے اس کا دینا ہے۔ اب غور سے سنیے یہ مثال، وہ کہے گا میں نے اس کا دینا ہے، آج مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا بندہ ہے، تو اب آج کے بعد اس کے پاس نہ آنا، میرے پاس آنا، اب میں تجھے 10-10 ہزار کر کے نا 10 دفعہ میں یہ 1 لاکھ پورا کر دوں گا، اور ساتھ ہی اس کو بھی کہتے ہو بدبخت آج کے بعد میرے سے مطالبہ نہ کرنا اسے 1 لاکھ کا۔ اتنی مثال کلیئر ہے، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جو خود نہیں دے رہا اپنا پیسہ جس سے لیا ہے تو کوئی دوسرا کہتا ہے میں دیتا ہوں اس کی طرف سے اور اس کو نہیں دوں گا، یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم جب اللہ کے حق مارتے ہیں، ہم جب اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے نا، تو پھر وہ ہمارے بچے دوسرے وہ بیٹھے وہ قسطیں چکاتے ہیں پھر۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ اضطراری مجاہدوں میں ڈالے جائیں، اختیاری قبول کر لیں، قدر کیجیے اپنی، گھر بیٹھی چیز ضائع ہو جائے دکھ ہوتا ہے، کہتے کسی کے منہ میں چلی جاتی۔ نوٹ بدل گئے تھے ایک دفعہ کسی ملک کے، جن کے ادھر ادھر رکھے تھے کچھ بعد میں نکلے جبکہ وہ 0 تھے، پھر ان کو حسرت ہوئی کہ ہائے اس کو وقت پہ کسی کو ہی دے دیا ہوتا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی آپ کی میری۔ اور اس ملک میں، اس جگہ، اس شہر میں اگر اس دین کو میں نے آپ نے اس طرح نہ پھیلایا اور پہنچایا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا، اتنی شامت آنی ہے، میں نہیں جانتی وہ کیسے آنی ہے، اللہ معاف کر دے مجھے تو میں بڑی اس کی شکر گزار ہوں گی، اور اللہ آپ کو مجھے سب کوئی معاف کر دے، ہم میں سے کسی میں پکڑ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے، لیکن حساب تو ہوگا، پھر اس کے بعد بچ جائیں تو اور بات ہے۔ کرم کتنا بڑا ہے آپ ذرا سوچیں، یہ کرم کتنا بڑا ہے اس رب کا کہ آپ اور میں इस कुर्सी और मेज़ पे पिछले 10 साल से ज़ायद होने वाला हो गया हम सिर्फ काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ते हैं। कभी आपने इस ऑनर को फील किया? इसके बाद तो बंदा चुप नहीं रह सकता। मैं तो कहती हूँ कुरान पढ़ने के बाद तो आग लगती है, अपनी हर ज़रूरत पीछे, जज्बे पीछे। यानी आज अगर मैं जज्बात की कुर्बानी ना देती ना, तो इस वक्त आज मैंने असलों में नहीं होना था। बड़ी पर्सनल बात है जो मैं आपको नहीं बता सकती। अल्लाह की कसम, अगर मैं जज्बाती तौर पे अल्लाह के और रसूल की मोहब्बत में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना कर रही होती, मैंने आज असलों में नहीं होना था। पर ये मेरी एक बड़ी छोटी सी कुर्बानी है जो मुझे इतनी बड़ी कॉज के आगे बड़ी छोटी लगती है। इसका जिक्र भी छोटा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन माँ ना बताए बच्चों को तो कौन बताएगा, तो उस्ताद ना बताए शागिर्दों को तो कौन बताएगा। हमेशा तो पैसा नहीं जाता, हमेशा तो इसमें यानी पाँव मछाले तो नहीं पड़ते, इसमें तो बहुत कुछ होता है। जिंदगी का एक फोकस बना ले बस, कंपस। बंदा मोमिन का दिल अल्लाह की मोहब्बत के दायरे में घूमता है, इससे बाहर जो चीज़ गई जाओ फिर छुड़ा दो उसको, स्ट्रिंग जोड़ लें। ये नकदरी है हमारी इस दीन के साथ कि हम मुसलमान हैं। जिस मुल्क में रहते हैं आपको उस मुल्क की ज़ुबान में दीन फैलाना है, फिर बचेंगे आप? ये कब तक आप आएंगे उर्दू बोलने वाले? इधर यंग बच्ची बात कर रही थी, ऐसे ही दुख सुख होते ना, वो स्कूल में देखती है, उसने मुझसे इतने आराम से शेयर कर दिया कि जब हम उनकी उम्रों में थे ना, तो हम ऐसे जुमले बोलने सोचने को भी गुनाह समझते होंगे। हमारे घरों में क्या था माहौल, आप खुद सोचे ना। इतना ज़्यादा हम लोग ढके छुपे रहते थे इन चीज़ों में, अपनी पर्सनल बातें माँ से नहीं कर सकते थे हम लोग, दोस्तों से दूर की बात है। और जिस प्रेशर में हमारे बच्चे हैं ये हम सब जानते हैं। हम फिर ऐसा ऐसा दीन छोड़ रहे हैं, छोड़ना कुछ और था। और सच्ची बता रही हूँ आपको कि अगर इस बात का एहसास ना हो ना, तो कभी बंदा रुख ना करे इन जगहों का। मक्का के क्या माहौल था, और क्या मक्का में वो गैर अजीज ज़र इनके लफ्ज़ हैं कुरान में, जो ये जगह दीन से नाबलद हैं, वो फितने तो पीछे हो गए हैं। जो पहले कभी आपकी मेरी जवानी में जो फितने थे ना, वो अब एक्सेप्टेड हैं। पहले एक्सपेक्टेड थे, फिर एक्सेप्टेड हो गए। आज माँ बाप ने भी एक्सेप्ट किया है कि पहले लड़का लड़की मिलें, बातें चीते करें, कुदावतें खाएं पिएं, ज़रा एक दूसरे को समझ लें, तो फिर शादी करेंगे। इज सो एक्सेप्टेड। कुरान कहता है, हदीस कहता है, ये नबी कहता है कि जब एक मर्द और एक औरत तन्हा होते हैं, साली सहुम शैतान, फिर ये बातें एक्सट्रीम लगेगी, फिर हम जैसे मौलवी लगेंगे, पुराने दौर के लोग बुद्धू, सूद की बात कर लें तो सारे कहेंगे ये एक्सट्रीमिज्म है। 5 वक्त मर्द मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, टू एक्सट्रीमिस्ट, ये एक्सट्रीमिज्म है। आज सुबह 6 बज के उठकर लोग जॉबों पे भागें, ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है। हमारे बच्चे बच्चियाँ कितनी कुर्बानियाँ दे के बेचारे पढ़ते हैं, आप सब जानते हैं। तो दिन ब दिन नबी का लाया हुआ दीन अजनबी, अल्लाह के नबी ने कहा था, अद्दीन बदाउ गरीबन, ये दीन अजनबीयत से शुरू हुआ। और एक वक्त आएगा लोगों को अजनबी लगेगा। और एक वाक्य मैं इशारा करूँगी, आप सब समझ जाएंगे। जब अल्लाह के नबी को नबूवत मिली तो आप कहे सफ़ा पे खड़े होकर क्या कह रहे थे? सारी फैमिली को बुलाया, या कुरैश, या बनी फहर, फुला फुला फुला, सारे जमा हो गए। क्योंकि उस दौर में खुले पहाड़ पे जाकर ऐसे कपड़े लहराते थे तो लोग फौरन समझ जाते थे कोई खास बात है। सब घर डर के आ गए, पता नहीं दुश्मन आ रहा है, हमला हो रहा है, क्या है। जब सारे पास आ गए तो अल्लाह के नबी ने फिर उनसे कहा, अगर मैं कहूँ पहाड़ के पीछे से दुश्मन आ रहा है, ये सुना हुआ ना वाक्य, सब हाँ हाँ बिल्कुल मानेंगे क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। तो कहा लोगों, फिर मैं एक बात कहता हूँ, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, एक अल्लाह को मानो फला पाओगे। इस पे जो गालियाँ सुनी आपने कि नौज़ुबिल्लाह तेरे हाथ ही टूटे, उस दिन लोगों को बहुत अजीब लगा था। सूरह स्वाद का बिल्कुल शुरू खोल लें, आपको ये जो मैंने बात कही ना, ये उसका पूरा वहाँ स्केच है। उठ के सरदार टांगे उठा के हो हूँ करते निकल गए कि इसलिए मैं बुलाया था तूने, अजनबी लगा था लोगों को कि इतनों को छोड़कर एक रब को माने। आज भी हमारा वो रब अजनबी है लोगों के लिए? आई डोंट थिंक सो। नाउ देर इज़ नो गॉड, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो सारा वो मामला समझिए। फिर एक चौथी वजह नोट करें, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में लाने की। सहाबा कराम ने नबी सल्लम से जैसे मोहब्बत की उसको पढ़िए, सहाबा के नक्शे कदम पे चलिए, कैसे जान माल औलाद से बढ़कर प्यार किया जाता है, ये बातें थेरी से नहीं समझ आती, इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में सुने। मंजल्लज़ी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, अबू दहदा थे इसकी मिसाल, साहबा ने कैसे आपसे मोहब्बत की जाकर उसको देख लें। सही मुस्लिम की रिवायत है 23:25, अनस कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप हिजाम से अपनी हिजामत बनवा रहे थे, यानी बाल कटवा रहे थे, हेयर कट ले रहे थे, और सहाबा कराम आपके इर्द गिर्द जमा थे। इनकी तमन्ना ये थी कोई भी बाल गिरे तो इनके हाथ में गिरे। और अनस कहते हैं कि उहद के दिन जब शुरू में शिकस्त के आसार बने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग दूर हो गए, तो मैंने देखा कि अबू तलहा कैसे अल्लाह के नबी का दिफा कर रहे हैं कि अपने हाथ पे ज़ख्म ले रहे थे। नबी के ऊपर जो तीर चलता था उसको अपने हाथ पे लेते थे और बार बार अल्लाह के नबी उनको कह रहे थे कि फिदा मी अभी। तो सहाबा की बातों को देखिए। और फिर पांचवी वजह जिससे वाकई दिल में आपके मोहब्बत आएगी, आज यहाँ से उठने से पहले एक नीयत करके उठें, लफ्ज़ सुन्नत को हकीर नहीं जानना। आपकी कौली सुन्नत है, फैली है, सबको ही पता है, या तकरीरी, तीन ही होती है ना सुन्नतें। आपने कुछ कहा वो भी सुन्नत है, कुछ किया वो भी सुन्नत है, और कुछ करते हुए देखा तो खामोश रहे वो भी सुन्नत है, यानी हमारे नबी की तो खामोशी भी सुन्नत है। आज नियत करें मैंने आपकी सुन्नतों को हकीर नहीं जाना, हर सुन्नत पे अमल करूँगी, अल्लाह के नबी के हर हुक्म को हर बात पर मुकद्दम समझूंगी, आपके तौर तरीके पे चलूंगी, फिर देखिए कि आपके दिल में कैसे नबी की मोहब्बत आती है। और जिस शख्सियत के जितना करीब रहे ना उसका कुर्ब मिलता है। जैसा भी बच्चे को भी बहुत प्यार करें ना, संभाल लें उठाएं, उससे भी प्यार हो जाता है। और जिस दिन आप ख़ुद अपने लिए ये कर गई तो आपको बच्चों को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। औरत का तो कहना चाहिए कि आधा दिल औलाद में होता है, आधे से भी ज़्यादा ही। छोटी औलाद है तो थोड़ा दिल होता है, बड़ी होगी तो शायद और पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लम के इर्द गिर्द की औरतें अपने बच्चों के दिलों में कह कर के नहीं मोहब्बत डालती थी, अमल से मोहब्बत डालती थी। आप देखिए उम्मे सुलैम अनस की माँ थी, 10 साल की उम्र के बच्चे को अल्लाह के नबी को दे आई। आज हम होते तो देते, हाँ कहते नहीं इसकी तो पढ़ाई है, इसने तो जॉगिंग करनी है, इसकी स्विमिंग भी है, इसके तो ट्रेनिंग चलनी है। ये तो मैंने आज मौजू छेड़ा ही नहीं है क्योंकि ये आगे एक हम पूरा सेमिनार करने वाले हैं बच्चों की तरबियत पे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो आप भी सुन सके तो सुन लीजिएगा। असल बात यह है कि वो माएँ जो कर रही होती थी, बच्चे खामोशी से देख रहे होते थे, तो अल्लाह करे कि हम भी ऐसी ही खूबसूरत मिसालें बने। अपने आप को इल्म से जोड़े रखें, देखिएगा एक वक्त आएगा अमल ज़रूर आएगा। ये बहुत बड़ा धोखा होता है शैतान का कि नहीं अमल तो कर नहीं रहे तो फिर जो भी है। छोटी सी दुआ ताकि जो भी कमी बेशी हो गई है अल्लाह ताला वो हमारी तरफ से दूर कर दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या अल्लाह हमारी कमी कोताही से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम तेरे कमज़ोर से बंदे हैं और तू खुद कहता है वखुलिकल इंसानु दईफा। या अल्लाह अपने समेत अपने सारे साथियों के बारे में ये उज़र रखती हूँ कि हम तेरे बड़े ही कमज़ोर बंदे हैं, हर लिहाज से कमज़ोर हैं, ईमान भी कम है, तवक्कुल भी कम है, शुक्र भी कम है, और या अल्लाह तेरी नेमतों के मुकाबले में हमारे आमाल भी बहुत थोड़े हैं, तू अपनी शान रहीमी और करीमी से हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह इस दुनिया में हमसे अपने काम ले ले, हमें तो बहुत सारे काम हैं, तू हमें उन कामों में से निकाल कर अपने काम का बना ले। या अल्लाह मैं ज़ाया होने से बचा, या अल्लाह मैं खोटे सिक्कों की तरह इधर उधर भटकने से बचा। या अल्लाह जब तूने हमें इतना प्यारा मकसद दिया है जीने का, तो या अल्लाह इसी मकसद के लिए जीने और इसी मकसद के लिए मरने की तौफीक अता फरमा। जितने भी साथी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, यहाँ आए आज हमारी दावत पे, सब के लिए या अल्लाह बे इंतहा अपनी रहमतें आम कर दे, इनकी बीमारियों को दूर कर दे, परेशानियों को दूर कर दे, सेहत और आफियत दे, ज़िंदगी भी अच्छी हो और मौत भी अच्छी हो। या अल्लाह हमारे माँ बाप पे अपनी रहमतें फरमा, जो जिंदा उनकी ज़िंदगी सेहत आफ़ियत और नेमतों वाली हो, नेमतों के जवाल से बचा, हमें उनको कमज़ोरियों में और बीमारियों में देखना ना पड़े, वो हमारे लिए दुआएं करते ही रहें और हम उनकी दुआएं लेते ही रहें। और या अल्लाह हमारे उस्तादों पे भी अपनी रहमत फरमा, या अल्लाह हमें उनके लिए सदका खैर बना, सदका शर ना बना। या अल्लाह औलादों को आँखों की ठंडक बना, उससे पहले हम खुद अपनी आँखों की ठंडक बने, हमारे और हमारे बच्चों के दिलों में कूट कूट कर अपने नबी का प्यार डाल दे, आपको ही रोल मॉडल बनाने वाला बना दे, आप ही को देख देख कर चलें, आपके कदमों पे कदम रख कर चलें, आपके नक्शे पा हमारे लिए कदम रखने की जगह बन जाए। या अल्लाह 19 से 20 का भी फ़र्क ना आए हमारे जीने में और उनके जीने में, और हमारे मरने में और उनके मरने में। और या अल्लाह कल क़यामत के दिन आपकी शिफात अता फरमा, और कल जन्नत में आपका साथ भी अता फरमा। या अल्लाह बहुत बड़ी बड़ी बातें मांग रहे हैं, लेकिन तुझे देखकर मांग रहे हैं, अपने आमाल को देखकर नहीं। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्तुर अवरातिना व आमिर अवातिना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अश्हदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين।